हैं और विशेष रूप से माननीय मंत्री जी अरविंद पधारे हैं, उनका स्वागत करते हैं। और गुरु जी जो रामायण मंडली के द्वारा भगवान राम की महिमा का सुंदर गान बच्चों के द्वारा श्रवण कराया, इन सबका अभिनंदन करते हैं। ये पूरा महीना उत्सव का महीना, श्रावण का महीना पूरा हुआ, उत्सव का महीना, और अब जन्माष्टमी तक रहेगा और फिर राधाष्टमी। लेकिन इस साल एक विशेष महीना पुरुषोत्तम मास आ रहा है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो राधाष्टमी एक महीना बाद में हो जाएगी, तो आपके लिए उत्सव का एक और ज्यादा महीना हो गया, तो आप इस उत्सव का लाभ लीजिए। जो पहले गुरुजी की बात को करें कि पहले बच्चों की बात को करें, गुरुजी ने एक भगवद गीता का बहुत सुंदर श्लोक, कर्म एवं अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगो अस्वकर्मणी। बहुत ऐसा अद्भुत श्लोक है, भगवान कहते कर्म करो, कर्म एवं अधिकारस्ते, कर्म करने का आपको अधिकार है, मा फलेषु कदाचन, और फल का कभी नहीं है। तो लोग कहेंगे कि हम आपके दुकान के, आप पर नौकरी करें, आपकी गवर्नमेंट की नौकरी करें, तनख्वाह नहीं देंगे। क्यों मंत्री साहब आते हैं, सबको कहेंगे आइए अपॉइंटमेंट लीजिए, सर्विस कीजिए, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कोई काम करेगा? नोबडी विल वर्क। व्हाट इट मीन्स एक्चुअली, एक बहुत सुंदर भाव प्रकट किया गुरु जी ने, लेकिन इसका एक साधारण आपको उदाहरण देता हूं, आप समझेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। अब बच्चे लोग स्कूल जाते हो ना, बच्चे पढ़ने एग्जाम भी होते हैं ना, तो आपको एग्जाम देने का अधिकार है। यू हैव द राइट टू अपियर इन द एग्जाम। डू यू हैव अ राइट टू गिव रिजल्ट? यू हैव अ राइट टू अपियर इन द एग्जाम। आपको परीक्षा देने का अधिकार है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। इज इट राइट? रिजल्ट कोई और देता है। इसका लाभ क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? पास होते हैं, नहीं तो कभी पास नहीं होंगे। If you give yourself result, you know what is the subject and you know what I don't know and you never pass. अब बहुत बड़ा विज्ञान है। जब मैं खुद अपना परीक्षा लूंगा, मुझे मालूम है कि डॉक्टरी में कितना लिखा है और मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है, तो मैं कभी पास नहीं होऊंगा। ये तो दूसरा रिजल्ट देता है, इसलिए हमारा उधार होता है। और दूसरा रिजल्ट देता है, भगवान ने फल देना अपने हाथ में रखा है। यश अपजस, ये जो गुरु जी कह रहे हैं भरत को, बहुत सुंदर छह चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है, जन्म मृत्यु और नहीं, जन्म मृत्यु, जश अपजस, और दो चीजें क्या है, हानि लाभ, विधि रखा अपने हाथ। तो एक डॉक्टर साहब था, एक बूढ़ी माता जी के बच्चे का एक महीना सर्दी गर्मी में मुश्किल में जाके इलाज किया, उसका ट्रीटमेंट किया, तो महीने के बाद माताजी ने अपने हाथ का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ एक पर्स डॉक्टर साहब को गिफ्ट दिया। तो डॉक्टर साहब कहते, एक महीना मैंने ट्रीटमेंट किए माँ, ये तुम्हारे एम्ब्रॉयडरी के पर्स से मेरा फीस ज्यादा होता है, तो मांग लिया। कितना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहते 10,000 मिनिमम चाहिए। माताजी ने पर्स को खोला, अंदर 50,000 था, उसमें से 10,000 गिन के डॉक्टर को दिया। तो हम फल मांगेंगे तो मूर्खता में अपना लाश कर देंगे। ऊपर देने वाला इतना देता है कि हम उसको संभाल भी नहीं सकते। तो फल देना भगवान ने, अब एक अद्भुत बात बताएं, कलयुग ऐसा युग है जिसमें आप बुरा जब तक करोगे नहीं, बुरा कितना भी सोचो के दंड नहीं मिलेगा। सतयुग में बुरा सोचने के ऊपर दंड मिलता है, तुमने बुरा सोचा है। और कलयुग में एक और क्या बहुत उत्तम लाभ है, आप भला करो मत, लेकिन भला सोचो तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। आप सुबह उठ के रोज अगर कहो कि आज मैंने 100 बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दे दी, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आप 10 बार ऐसे कहोगे तो 11 बार आप वो करोगे अपने आप, देन यू विल हैव दैट हैबिट। लेकिन ऐसे कई बार हम ये कथा में कह चुके, आप सुबह कम से कम अच्छी भावना तो किसी के लिए रखो, लेकिन कभी होता नहीं। यू जस्ट थिंक गुड फॉर अदर्स एंड यू विल बी बेनिफिटेड। थॉट हैज ए पावर। सो इस श्लोक में भाव ये है कि हमें अपने कर्तव्य करने कर्म करने का अधिकार है, अधिकार का मतलब वी हैव ए राइट, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है, फल देने वाला और कोई है, और जो वो फल देता है वो फल जो देता है वो हमारी इमेजिनेशन से नहीं आता है। एक बार भगवान भोले हैं कन्हैया जैसे ये कह रहे थे, तो एक सेवाधारी बड़ा अच्छा उसका सेवाधारी था, भगवान का प्रेम से सेवा करता था, देखता था रोज भगवान खड़े हैं मंदिर में, थक जाएंगे खड़े, थोड़ा खेल के आ जाएं, बैठ बैठ के कितनी देर खड़े रहेंगे। उसने कहा भगवान आप आज थोड़ा घूम के आओ जरा वृंदावन में, गैया वैया का देख के आ जाओ, मैं आपकी जगह पे खड़ा रहूंगा। अब भगवान ने कहा देखो तुम कैसे मेरी जगह पे खड़े रहोगे, भाई एक बात है चुप रहना, बोलना मत। भगवान ने अपने वस्त्र आभूषण उसको दे दिए और थोड़ी देर के लिए वो ऐसे खड़ा हो गए। एक भक्त आया और आते ही भगवान को कहते हैं आपकी कृपा से मेरे को एक कांटेक्ट मिल गया है, मेरा बिजनेस बढ़ने लगा है, बस एक कृपा कीजिए दूसरा एक कांटेक्ट मिलेगा, हम आपकी सेवा करेंगे। 100 रुपये का नोट भगवान के उसमें डाला और जो पर्स निकाला वॉलेट वो रखते जेब के वो नीचे गिर गया और वो चला गया। ये भक्त खड़ा देख रहा है। एक दूसरा बेचारा गरीब भक्त आया, कहता है भगवान मेरी लड़की की शादी है, मेरे को कृपा करना, मेरी बच्ची की शादी के लिए सहायता के लिए कुछ नहीं है, प्रणाम किया तो नीचे इतना बड़ा पर्स में पैसा देखा। बोला क्या भगवान आपने कृपा की, अभी का अभी यहाँ फल मेरे को दे दिया, यो तो लेके गया बच्ची की जाकर शादी कर ली उसने। एक और नाव में चढ़ के जाने वाला था एक महीने के लिए शिप में कहीं बाहर, तो आया भगवान को प्रार्थना की भगवान मैं एक महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं पीछे बच्चों का कौन देखभाल करेगा, आप हमारी रक्षा करना। इतनी देर में जिसको पर्स जो गुम कर गया वो पुलिस को लेके आ गया और कहा यही है और कोई तो मंदिर में आया नहीं, इसने ही पैसे उठाए होंगे, उसको ले जाके जेल में डाला। अब ये कहता नहीं नहीं, तब तक वो निकल गए, भगवान वापस लाए, बोले चुप, इसको बोल तुमको मैंने बोला मत बोलना, तुम सिर्फ चुप करके खड़े हो, तुम्हें क्या पता क्या होना है। तो बोला भगवान मैं तो बोला ये तो गलत हो रहा था, बोला गलत तुम्हें मालूम नहीं है, वो जो पहला आया था वो तो बहुत काले पैसे का पैसा लाया था, उसका पैसा लेके किसी अच्छे काम में लगा दिया। बोला वो तो अच्छा किया आपने कि उसका अच्छे काम में लगा दिया, नहीं तो वो जाके कहीं शराब पी पे अपना सत्यानाश करता। लेकिन वो बेचारा नाव वाला जो जाने वाला था बाहर उसको जेल में क्यों डलवा दिया, बोला उसकी नाव डूब जाती, आज गया होता तो उसकी नाव डूब जाती, वो अभी आज जेल में है और जेल में है तो कल निकल आएगा क्योंकि उसने पैसा तो लिए नहीं है। लेकिन तुम्हें मेरी फल मैं देता हूं, तुम्हें पता नहीं है किसकी उधार किसके पास कब की रही हुई है, एक जन्म का हम तो सिर्फ इस जन्म का जानते हैं कि हमारा लेना देना क्या है, भगवान तो कई जन्मों का जानते हैं। अपने ही घर में बेटा पैदा होता है और अपना ही बेटा सारा कुछ सारी उम्र का कमाया शादी के समय लेके पत्नी के साथ चला जाता है, माता पिता बेचारे बैठे होते हैं घर में, कोई देखने वाला नहीं है, हिसाब किताब अपना होता है, लेके जाता है। कितने घरों से गए हैं बच्चे देखो जरा बताओ, अच्छा सरेआम खुला डाकू किसी को मानते हो जो लूट के चला जाए वो बेटा है, हंसी खुशी शादी का खर्चा कराए सब कुछ लेके और चला गया पत्नी के साथ, फिर तो राम राम करने भी नहीं आएगा, मरने के समय आए तो आए कभी कभार। ये सब जीवन का फल एक जन्म का नहीं कई जन्मों का है, इसलिए कर्म करने का हमारे को अधिकार है। और गीता अगर पढ़ेंगे तो कर्म कितना परफेक्टली हमको करना चाहिए, बहुत उत्साह के साथ करना चाहिए, कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन किसके लिए कर्म करना चाहिए, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, किसके लिए कर्म करना चाहिए। और भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने कहा मत कर्म करना मत परमो भद मत भक्त संग वर्जित, मत कर्म कर मेरे लिए काम करो। भाई आप किसके लिए काम करना पसंद करते हो, एक प्राइवेट नौकरी मिलती है वो छोड़ के गवर्नमेंट में क्यों जाते हो, गवर्नमेंट बड़ी है, गवर्नमेंट की फैसिलिटी बड़ी है, गवर्नमेंट रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है, प्राइवेट पेंशन तो नहीं देगा ना, तो जो बड़ा है उसकी सेवा करोगे तो बड़ी फैसिलिटी मिलेगी। तो भगवान से बड़ा कोई है क्या दुनिया में, भगवान से बड़ा कोई है क्या, ना अहम परत्रम नास्ति धनंजय, मेरे से और ऊपर कोई नहीं है धनंजय, तो उसकी सेवा करने से कोई कमी है क्या। भाई मिनिस्टर साहब आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी में आगे बैठ के जाता है ना, उसी गाड़ी में सफर करता है ना, मिनिस्टर के फ्लैग वाली गाड़ी में वो सफर करता है,
तो जो भगवान का सेवक है वो तो भगवान के साथ ही जाता है, उसको कोई फैसल। और जो 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 किचन में काम करता है रसोईया आपका, वो तो भोजन वही खाता है जो आपकी टेबल के ऊपर आता है, तो भगवान के सेवक होने से कोई नुकसान थोड़ी है। तो काम किसके लिए करना चाहिए दुनिया। अब दूसरी इसके अंदर एक थोड़ा सूक्ष्म, काम करते हैं किसी और के लिए, प्रेम करते हैं किसी और से, काम करते हैं मालिक के लिए और प्रेम करते हैं परिवार से। भगवान कहता है ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए, काम भी मेरे लिए करो और प्रेम भी मुझसे करो। प्रेम तो अपने बच्चों से करते हैं, काम दूसरे के लिए करते हैं, तो ये तो बंटवारा हो गया ना। काम मत कर्म, काम मेरे लिए करो, मत परमो, और जीवन का लक्ष्य भी मुझे बनाओ। आपने जीवन का लक्ष्य किसको बना के रखा है? आपके जीवन का लक्ष्य कौन है? बच्चे छोटे होते हैं ना तो एक लॉकेट बनाते हैं, उसमें माता पिता का फोटो लगाते हैं, कभी हनुमान जी का फोटो लगा लेते हैं, थोड़े दिन के बाद चेंज हो जाएगी, शादी हो गई तो फिर पति का फोटो लगा देते हैं, फिर जब पति से झगड़ा हो गया तो वो फोटो भी चेंज करके फिर कोई तीसरा फोटो लगाते हैं। भगवान कहता है किसी का नहीं, ओरिजिनल मेरा फोटो दिल में है, उसको हटा के और किसी को मत लगाओ। अगर देखना है तो जाके हनुमान को देखो, छाती खोल के दिखाया था कि सीताराम है अंदर। तो असल में जिसका फोटो छाती में है उसको हटा के और किसी का लगाओगे तो वो टिकने वाला नहीं है, वो इधर से उधर हटने वाला है। इसलिए भगवान से प्रेम करना एक ही दुनिया में धर्म है, धर्म दुनिया में एक ही है सिर्फ। प्रेम सबके हृदय में जन्म से भरा हुआ है, कोई प्रेम से खाली इस दुनिया में है नहीं। बताओ कोई दुनिया में ऐसा है जो प्रेम नहीं करता हो किसी से? अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, जाति से प्रेम करते हैं, मानवता से प्रेम करते हैं, प्रेम तो सबसे करते ही है, कोई आदमी प्रेम से खाली तो नहीं है। और सेवा, कोई ऐसा है जो सेवा नहीं करता है दुनिया में? भाई बच्चों की सेवा करनी पड़ती है, मालिक की सेवा करनी पड़ती है, किसी के घर में कोई सेवा करने वाली नहीं, कुत्ता पाल के उसकी सेवा करता है, बिल्ली पाल के उसकी सेवा करता है, बगैर सेवा के तो नहीं रह सकता है। तो सेवा करना और प्रेम करना सबके हृदय में जन्म से भरा हुआ है, लेकिन इस दुनिया की जब भी प्रेम और सेवा किसी से की है वो सदा रहने वाला तो है नहीं। वो प्रेम और सेवा हमारी समय समय के ऊपर बदलती रहती है, चेंज होती है, तो हमारे को फ्रस्ट्रेशन होती। हमने सेवा तो की सेठ की, सेठ जी ने नौकरी से निकाल दिया, रिसेशन आ गई तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो गई। इसलिए सेवा और प्रेम एक ही धर्म है, और वो सेवा और प्रेम अगर भगवान की ओर मोड़ दिया जाए तो वो एक ही परम धर्म सनातन धर्म है, क्योंकि जीवात्मा सनातन है, धर्म सनातन है, और सनातन धर्म प्रेम और सेवा है, और भगवान सनातन है। सनातन भगवान की, सनातन जीव प्रेम और सेवा सनातन करेगा तभी सुखी हो पाएगा। सुख को चाहो सदा शरण राम की लो। राम का मतलब है आनंद, एक रमण शब्द होता है। बच्चे खेलते हैं ना, बोलते हैं बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को खेल में इतना अच्छा लगता है। व्हेन दे प्ले दे आर सो एनग्रास्ड इन एब्जॉर्ब इन प्लेइंग दे फॉरगेट ईटिंग। तो ऐसे रमण का मतलब है राम में रमण। अभी सुबह में कथा में कह रहा था, आपके शाम को सीरियल आता है ना टेलीविजन में, उस टाइम पे आप सब बैठते हो ना, कहीं भी होते हो सब काम छोड़ के टीवी के आपके सामने बैठते हो अपने सीरियल पे, और रोज वो टाइम पे उधर जाके बैठते हो। ऐसे साधु जब साधना करता है उसके हृदय के अंदर भगवान के लीला का टेलीविजन चालू होता है, और जब वो ऐसे सुबह बैठ के उठ के भगवान के दर्शन करके जप करता है तो हृदय में वो भगवान के आनंद की लीलाओं का दर्शन होता है। इसलिए उस टाइम वो सब काम छोड़ के वहीं बैठ जाता है जैसे आप टीवी सीरियल के ऊपर बैठते हो, ऐसा ही उसका भाव होता है। एक बार एक बहुत बहुत बड़े भगवत प्रेमी संत वृंदावन में बैठे थे, और ऐसे अंदर में हृदय में भगवान के लीला का दर्शन कर रहे थे। सामने से कोई एक संत गुजरा जो पांव से थोड़ा लंगड़ा था, और उसी वक्त उस संत के को हंसी आ गई, आंखें बंद ही थी, हंसने लगा। तो उस बिचारे ने कहा कि बिकॉज आई एम लेम ही मस्ट बी लाफिंग ऑन मी, ही इज द ग्रेटेस्ट वेल नोन सेंट इन द एरिया, व्हाई इज लाफिंग ऑन मी। और केवल उसने सिर्फ समझ लिया कि मेरा अपमान किया है, और संत के हृदय में वो जो दर्शन हो रहा था वो बंद हो गया। ही कुड नॉट सी इट अगेन। अपने गुरुजी के पास गए, वरिष्ठ अपने भाई के पास गए, कहा ऐसे आनंद में मैं भगवान का नाम स्मरण करके और लीला का दर्शन कर रहा था, पता नहीं अब वो आनंद नहीं आ रहा है। कहा किसी का अपराध किया है? बोला जाने बूझे तो नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे किसी एक्शन से कि तुम्हारे किसी विशेष भाव से किसी को कष्ट पहुंचा होगा। बोला कैसे पता लगेगा गुरुजी? बोला सबके लिए भोजन, सबको भोजन के लिए बुलाओ, जितने भी यहाँ अपने साधु हैं भोजन पे बुलाओ, जिसको नाराजगी होगी वो नहीं आएगा, तो पता लग जाएगा कि नाराज हो गया। तो जब भोजन के बुलाया तो वो बेचारा पांव से जो लंगड़ा था वो नहीं आया, तो उसको पूछने गए तुम भोजन पे क्यों ना आए? बोला आपका भोजन क्यों करेंगे, आप हमारा मजाक उड़ाते हैं। बोला कब? हमने तो आपको देखा नहीं, मुझे याद नहीं है कि कब जाते हुए कभी हमने आपको कुछ कहा हो। बोला उस दिन उस समय फलाने टाइम पे एट दैट टाइम आई वाज पासिंग फ्रॉम देयर, आप हंस रहे थे मेरे ऊपर। तो रूप गोस्वामी जो उस वक्त के मंत्री थे नवाब हुसैन शाह के, बंगाल में नवाब हुसैन शाह के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और वो मिनिस्ट्री छोड़कर और वृंदावन के अंदर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वृंदावन जो आज देखने को मिलेगा इसको प्रकट करने के लिए आए थे। वृंदावन मुगलों के जमाने में के टाइम में उनका जो है शिकार की जगह थी, हंटिंग प्लेस था। देयर वाज नो साधु नो टेम्पल देयर प्रैक्टिकली, इट वाज जस्ट ए फॉरेस्ट फॉर हंटिंग फॉर द मुगल्स, और साधु बिचारे कहीं कोनों में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जब आए उन्होंने कहा जाके आप वापस भगवान की लीला के स्थलियों को फिर दोबारा निर्माण करो, मंदिर बनाओ, और उन स्थितों में जहां जहां भगवान ने लीला कही, तो वो भगवान साक्षात अब रूप गोस्वामी उनमें से एक थे गोस्वामी में से। वो कहते किसी को बताने की तो बात नहीं है भगवान के आनंद के लीला का, लेकिन आपको बताता हूं मैं सच। जब आप वहां से गुजरे समय जो बता रहे, उस वक्त मैं ध्यान में बैठा था, भगवान की हृदय में एक लीला चल रही थी भगवत दर्शन की। श्री कृष्ण और राधा वन में, राधा जी ने एक सुंदर सा ऊपर फूल देखा और कहा कृष्ण को कि ये फूल मुझे चाहिए। तो श्री कृष्ण ने ऊपर हाथ लंबा करके उस जो ब्रांच थी उस डाली को उसको नीचे खींच लिया और राधा रानी को कहा अब पकड़ के इसमें से फूल निकाल लो। तो राधा रानी ने एक हाथ से ब्रांच को पकड़ा, एक से जैसे फूल को हाथ लगाया श्री कृष्ण ने डाली को छोड़ दिया और राधा रानी उस डाली के साथ ऐसे ऊपर लटक गई। तो उसको देख के मुझे हंसी आई थी, मैंने आपको तो देखा भी नहीं, मैंने आपको नहीं देखा। तो ये जो संतों को अंदर में भगवान के दिव्य आनंद का अनुभव होता है, इसलिए वो उस समय में अपने आनंद में रहते। तो ये भगवान की लीला हमारे हृदय में, इसलिए एक भगवत गीता का और अद्भुत श्लोक है। बात तो बच्चों की रामायण की तरफ जा रही, मन जा रहा है, लेकिन 5-7 मिनट में कथा को समाप्त करना है। भगवत गीता में एक अद्भुत श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म को और मेरे कर्म को दिव्य मानता है, उसको तत्व से जानता है, वो फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है और मेरे पास वापस अथवा आता है, मेरी जनता बनता है। एक और जगह पे भगवान कहते हैं मेरी जनता बनता है, मीन्स माय वो मेरी कंट्री में आके रहता है, गोलोक में आके रहता है, मेरा एसोसिएट हो जाता है। तो भगवान के जन्म में दिव्यता क्या है? श्री राम जी के जन्म को ले लो, दशरथ के घर में पुत्र होना था तो पहले तीन रानियों से कोई हो जाता ना, एक भी पुत्र तो नहीं था, ना कौशल्या को था, ना सुमित्रा को था, ना कैकेयी को था। तो उस दिव्य चारू को जब दिव्य चारू को वो भी श्रृंगी ऋषि ने जब ऋषि श्रृंग ने जब आके यज्ञ किया तो यज्ञ पुरुष ने जो चारू दिया उस जगह वाल्मीकि रामायण में लिखा है। उस यज्ञ में जब देवता भाग लेने के लिए आए थे इंद्र चंद्र आदि सब, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आपने क्या रावण को दे दिया है इतना बड़ा वरदान कि अब हम अपनी आसन के ऊपर शांति से बैठ नहीं सकते। वायुदेव कहता है रावण मुझे कहता है मुझे पंखा लगाओ, वरुण कहता है मुझे कहता है मेरे घर में पानी भर के आओ, अब हम देवताओं की ये हाल हो गया है। और ऐसे चर्चा कर रहे इतनी देर में भगवान विष्णु यज्ञ में प्रकट होते हैं और सबने भगवान विष्णु को प्रार्थना की कि अब तो आप सहायता हमारी कीजिए, ब्रह्मा जी के वरदान से इतना शक्तिशाली रावण हो गया है कि उससे हमारा सारा जो आपका जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सल वो डिस्टर्ब हो रहा है। भगवान विष्णु कहने का आप सब यज्ञ का भाग लेके जाइए, मैं इसी यज्ञ में अभी वो जो खीर लेके चारू लेके जो बाहर निकलेगा देवता उसमें प्रवेश करता हूं। मैं अभी इसी वक्त लेने नहीं आया हूं, मैं अपने आप को देने आया हूं और मैं इसी वक्त उस चारू में प्रवेश करूंगा। और वाल्मीकि जी की रामायण में लिखा है भगवान श्री विष्णु उसी वक्त उसी के अंदर प्रवेश किए और अपने चार जो एक्सपेंशन है वसुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण, इन चारों के रूप में वसुदेव राम जी हुए, संकर्षण लक्ष्मण हुए और दो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भगवान विष्णु के विष्णु तत्व हैं, चारों के चारों ऐसे प्रकट हुए। तो ये राम जी का जन्म सामान्य मानव की तरह माता पिता के गर्भ से होता है ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। ऐसे श्री कृष्ण के जन्म के विषय में भागवत लिखती है, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर, जो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, जो सब लोग जिससे प्रेम करते हैं, वो उसका विशेषता क्या है, उसका एक मुख्य गुण क्या है, जैसे गुरु जी कह रहे थे भक्त वत्सल, भक्तों का अभयंकर, भक्तों को भय से मुक्त, फियरलेसनेस अपने डिवोटीज को देता है। भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे, इफ यू वॉन्ट टू बी फियरलेस सिंपली रिमेम्बर भगवान का नाम ले लो। ऐसे कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वयं कह रहे हैं, योग माया को कह रहे हैं बुलाकर कि मैं अपने आप स्वयं अब देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा, लेकिन कैसे किया वो सुन लीजिए क्या कहा लिखा है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर अविशेष अंश भागेन मन अनंक दुमदुभी, वसुदेव का नाम है अनंक दुमदुभी, जिसके जन्म के समय देवताओं ने बिगल बजाए थे और बड़े हर्ष से, तो उसकी मां ने वासुदेव को कहा था बेटा तुम्हारे जन्म के समय देवताओं ने ऐसे दुमदुबी बजाई थी, मृदंग बजाए थे कि एक इसको भगवान के वात्सल्य प्रेम का भाग सौभाग्य होगा तो तेरे घर में भगवान प्रकट होंगे। आज उस वसुदेव के मन में भगवान प्रकट हुए और जैसे ही वसुदेव के मन में भगवान प्रकट हुए, पहले से है सबके मन में लेकिन वो प्रकट हुए और वसुदेव से भागवत में लिखा है इफलजल्स निकलने लगा और लोग उसको देख के आश्चर्यचकित होते कि वसुदेव चमक रहा है। और नेक्स्ट श्लोक कहते हैं तथा जगन मंगलम, जगत के मंगल के लिए अच्युत अंशम, भगवान अच्युत जो अपने वचन से कभी नहीं हटते हैं, देवताओं को वचन दिया था सुरसुतेन देवी, सुरसेन के पुत्र वसुदेव के द्वारा देवी देवकी के वहां मन में प्रवेश हुआ, वसुदेव के मन से देवी देवकी के मन में प्रकट हुआ। कैसे, एक एग्जाम्पल दिया है, काष्टा यथा मन अनंत अनंत कर, मन को आनंद देने वाला मन चंद्रमा, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा ईस्ट में उगता है, तो चंद्रमा जब ईस्ट में उगता है तो कोई कहता है कि चंद्रमा का जन्म हुआ, चंद्रमा जब उगता है रात को तो कोई कहता है चंद्रमा इज बॉर्न, ना अपने आप प्रकट हो गया। और लिखा है कैसे मन में आया, अपने आप आया। योगी तो बड़े ध्यान करते हैं, थोड़ी देर के मन में भगवान आते हैं, लेकिन वसुदेव के मन से देवकी के मन में भगवान परिवर्तित हुए, स्थानांतर हुए, ट्रांसफर हुए। इसी को श्रीधर स्वामी लिखते हैं दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर, दे हैव रियलाइज्ड परमात्मा एंड दे इम्पार्ट दैट to the disciple when they accept him. That is called transcendental initiation. It is like Vasudev has initiated Devaki. From the mind of Vasudev, Krishna has entered into the mind. And Devaki become effulgent. And then Sukhdev Goswami likhte hain, क्या देवकी की सुंदरता थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कंस के कारागार के कारण उसका कोई सुंदरता देख नहीं पाया। भगवान को हृदय में धारण किया लेकिन जेल के अंदर थी, जेल की कोठरी में उसकी सुंदरता किसी को देखने को नहीं मिली, लेकिन कंस ने जब उसको देखा कि सुमित सुचि सुमित बड़ी सुंदर पवित्र मुस्कान देवकी के मुख पे, बोला छह बच्चों को मैंने मारा तब तो ये बड़ी दुखी होती थी, आज ये सुखी क्यों है, Why she is so happy? कंस कहता है लगता है मुझे मारने वाला हरि इसके हृदय में आ गया है। कंस समझ गया कि भगवान इसके हृदय में आया है और कंस उस वक्त सोचता है मारना चाहिए, मेरा दुश्मन है, लेकिन कैसे मारूं? मारने से तो स्त्री को मारना पड़ेगा, और स्त्री मेरी बहन है और गर्भवती है। इसको मारूंगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे को नरक भोगना पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी अपजस नहीं करना चाहता हूं, मैं डिफेमेशन नहीं चाहता हूं, मैं स्त्री का वध नहीं करना। आई डोंट किल, आई विल वेट टिल ही अपियर्स। तो भगवान जिसके हृदय में आता है, कंस जैसा बदमाश भी सुधर जाता है थोड़ी देर के लिए, ही चेंज हिज माइंड। और फिर उस वक्त जैसे ही कंस गया, भगवान ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, चंद्र, नारद आदि ऋषि कंस के जेल के खाने में आके देवकी और वसुदेव के, देवकी के गर्भ में भगवान जो है उसको प्रार्थना करने लगी। सारे शास्त्र लिखते हैं गर्भ में नहीं पढ़ो, गर्भ में जाना बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, और जेल में जाने के समान है। लेकिन भगवान जब आए हैं जेल के अंदर गर्भ में, तो ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा शंकर आदि प्रार्थना करने आए हैं। और प्रार्थना करने जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उस वक्त वसुदेव और देवकी देखते हैं चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिया, सर के ऊपर सुंदर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में वैजंती माला है, और मुस्कुराता हुआ भगवान विष्णु सामने बच्चे के रूप में खड़ा है। देवकी और वसुदेव उसको देख के आश्चर्यचकित है, इसको भगवान के जन्म को दिव्य मानते हैं, बच्चे की तरह नहीं पैदा हुए हैं, चतुर्भुज रूप में पैदा हुए हैं, और माँ बाप से बोलने लगे हैं। और जब देवकी ने कहा कि छोटे बालक बन जाओ, हम आपको कैसे छुपाएंगे, माँ आप डरती हो तो चिंता मत करो, पिताजी मैं छोटा बन जाता हूँ, आप मुझे लेके गोकुल छोड़ के आओ, और वहां से बच्ची को लेके आना। तो ये दिव्य भगवान के जन्म की कथा को, और इसके ऊपर मैं बात ये करने जा रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, बहुत बड़े भारत के विद्वान अभयचरणार्थ भक्ति विद्वान स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव, कहते हैं कि भगवान के जन्म को हम तब समझ सकेंगे जिस दिन हमारे हृदय के अंदर ऐसे भगवान प्रकट होगा, तब हम समझते हैं कि भगवान कैसे अपीयर होता है। इसलिए हम कहते हैं हमारी जन्माष्टमी उस दिन होगी जिस दिन हमारे हृदय में भगवान का प्रकट होगा। ये तो उत्सव मनाते हैं कि एक दिन हमारे हृदय में भी ऐसे हो जैसे वसुदेव के हृदय में भगवान प्रकट हो, देन ओनली वेन वी कैन रियलाइज व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ गॉड। और शब्द अवतार है, इसका मतलब नीचे उतर के आना। जो रामायण आप बच्चों ने गाया, कौन सा बेटे कौन सा कांड गाया आपके विचार में? हाँ, अयोध्या कांड। पहला कौन सा कांड है? पहला बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्कंधा कांड है, पांचवा सुंदर कांड है, छठा लंका कांड है, सातवां उत्तर कांड है। सात कांड है रामायण में, ठीक है। आपने अयोध्या कांड में राम जी को वनवास दे दिया, और राम जी लक्ष्मण के साथ सीता के साथ सुमंतर मंत्री के रथ के ऊपर चढ़ के पहले अयोध्या की सीमा को पार किया। वो रात नहीं सोए, क्योंकि सारे अयोध्यावासी साथ थे, और अयोध्यावासी चार बजे तक जाग रहे थे। जैसे वो सोए, राम जी ने रथ को बोला इधर से पहले सीधा फिर टेढ़ा ऐसे ले जाओ, ये सुबह रथ का रास्ता भी नहीं देख पाए। और रात दूसरी रात को वो श्रृंगेरपुर पूछे, श्रृंगेरपुर गंगा के तट के ऊपर स्थान है, जहां का राजा निषादराज गोहे था। वो उस निषादराज गोहे ने भगवान राम का बहुत स्वागत किया। जब फल आदि दिया तो राम जी ने कहा हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये राज महाराज दशरथ के घोड़े हैं, इनको अच्छी तरह से देखभाल करो। आज गंगा के तट पे हम उपवास रखेंगे, आज कुछ खाएंगे नहीं, जलपान कहीं नहीं करेंगे, गंगा के तट पे उपवास रखेंगे। और उस दिन रात को लक्ष्मण का नेम था भगवान के चरण दबाना, और जब भगवान मानो 10-1 होते रात का टाइम 9:30, तो लक्ष्मण को कहते थे भैया अब आराम करो। उस दिन लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं और भगवान आंखें बंद करके सो गए। तो कोई कहता है क्या भगवान थक गए थे क्या, सफर करके आए थे, पहली बार राजकुमार इतना सारा परिश्रम किया था, थक बोला नहीं, राम थक नहीं सकते। एक तो इसलिए नहीं थक सकते हैं कि विश्वामंत्र ने जाते हुए उनको अति बल और बल विद्या दी थी और कहा था तुम कभी नहीं थकोगे, ये तो पहला वर्णन है। तो फिर आंखें क्यों बंद कर दी? राम जी कहते हैं आज मैं लक्ष्मण को सोने का नहीं कह सकता, क्योंकि आज से लक्ष्मण को 14 साल तक जागना पड़ेगा। अगस्त ऋषि ने राज तिलक के बाद राम जी की दरबार में एक दिन आके कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये इसमें लक्ष्मण न होता तो इस युद्ध में सफलता नहीं मिल सकती थी। वैसे हनुमान के लिए भी कहा, वो तो बहुत अच्छा एक प्रसंग और है। तो राम जी ने पूछा क्यों भाई लक्ष्मण, ऐसी क्या बात है, सभी ने सहायता की थी। बोला मेघनाथ को और कोई नहीं मार सकता था, और जब तक मेघनाथ नहीं मरता तब तक रावण के ऊपर विजय कोई नहीं प्राप्त कर सकता था। बोला मेघनाथ को कौन मार सकता था? बोला लक्ष्मण ही केवल मार सकता था, जिसको जो 14 साल सोया न हो, 14 साल जिसने खाया न हो, और 14 साल जो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी रहा हो, वही केवल मेघनाथ का वध कर सकता है, इसलिए 14 साल का ही वनवास था। अब तो राम जी कहने लगे क्यों, मैं फल देता था, लक्ष्मण फल जब लाते थे तो मैं उनको देता था। बोला आप उनको देते थे, वो वापस वन को दे देता था, जंगल को वापस दे देता था। अब शबरी के प्रसंग में देखेंगे राम जी ने फल खाया है, लक्ष्मण ने फल नहीं खाया है। तो फिर राम जी ने कहा नैष्ठिक की ब्रह्मचारी तो स्त्री को देखता भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ तो सीता साथ साथ हमेशा रही है। और तब अगस्त मुनि कहते हैं लक्ष्मण ने सीता जी के चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं है। और ये किष्किंधा कांड में जब आभूषण देते हैं सामने सुग्रीव, तब राम जी पूछते हैं लक्ष्मण देखो तो, बोला पांव की पायल तो पहचानता हूं ये बाबी सीता की है, लेकिन कानों के कुंडल मैंने कभी सर तक देखा ही नहीं। तो लक्ष्मण उस दिन से कभी सोया नहीं, दूसरे दिन सुबह उठ के गुहराज को, निषाद राज को कहा राम जी ने वट वृक्ष का दूध लाओ, और दोनों भाइयों ने जटाएं बांध ली, और जटाएं बांधने के बाद उस केवट को कहा कि गंगा पार करो। वाल्मीकि रामायण में केवट का प्रसंग नहीं है, तुलसीदास की रामायण में विशेष रूप से ये केवट का प्रसंग है। उसमें तो गुहा ने, निषाद राज ने बोट्स का अरेंजमेंट किया और वहां से वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। लेकिन गुहा जिसकी आपने वर्णन कर रहे थे, उसने भगवान को देखा कि आज भगवान अब रथ को भी छोड़ रहे हैं और बहुत उनका मन अब विदा कर रहे हैं मंत्री को भी, तो थोड़ा सा हास्य रस के लिए बड़ा सुंदरता से जो है केवट ने हास्य, ताकि भगवान को कुछ सुख पहुंचे, क्योंकि आज अब ये यहां से विदा हो रहे हैं, अपने सीमा छोड़ रहे हैं। तो उसने जो कुछ कहा, सब जानते हैं कि आपको तो मेरी नाव में चढ़ाने वाला मैं नहीं हूं, मैं जानता हूं कि पत्थर की नारी को पांव लगाया वो स्त्री हो गई है, मेरी बोट कहीं स्त्री हो गई तो मैं कहां जाऊंगा, खाऊंगा कहां से। इसका मतलब केवट कम से कम राम की महिमा को जानता था, केवट मूर्ख नहीं था, जो ये कह सकता है कि आपके चरण के स्पर्श से वो अहल्या नारी हो गई, तो इसका मतलब राम की महिमा को जानता था ना, तो भक्त था ना। इतनी महिमा नहीं जानता होता ऐसे थोड़ी कहता, ये तो भगवान को प्रमोद देने के लिए, ताकि भगवान को आनंद देने के लिए भक्त ऐसे कर रहा था। और जो भवसागर से सबको पार करते हैं, वो आज केवट को कह रहे हैं कि मेरे को आप गंगा पार कराओ। तो ये भगवान एक, और फिर उतराई के लिए कुछ नहीं लिया केवट ने, बोला बस इस उतराई में मेरे को भवसागर से पार कर देना। तो केवट की सेवा के बाद बड़ा सुंदर ये प्रसंग, इस प्रसंग सारे में भरत की महिमा है। अयोध्या कांड भरत की महानता का कांड है। इसी त्रिवेणी संगम के ऊपर भरत ने हाथ जोड़ के कहा था मैं क्षत्रिय हूं, मांगना मेरा धर्म नहीं है, याचना करना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है, लेकिन आज मैं मांग रहा हूं, मेरे धर्म से मैं विचलित हो रहा हूं, मैं धर्म को छोड़ रहा हूं, और फिर भी अपनी बेटी से तो कोई नहीं मांगता है, आप तीनों हमारी कन्या के समान हो। गंगा आप तो भागीरथ की पुत्री है, भागीरथ लाए थे वो तो सूर्यवंश के राजा थे, और सूर्य की पुत्री यमुना सूर्य वंश में हम उत्पन्न हुए, हम आप हमारी पुत्री हो, और सरस्वती आप तो वशिष्ठ नंदिनी हो, हम आपसे आज मांग रहे हैं, जहां देना चाहिए बेटियों को आज मैं मांग रहा हूं। और भरत मांगता है, मांगता मैं ये हूं कि मेरा राम के चरणों में अनुराग हो, उसको कभी नहीं भूलू, मेरे पाप अपराध को मत देखना, त्रिवेणी मेरे को ये आशीर्वाद देना। और भरत ने जब ये कहा तो गंगा जी और जमुना जी और त्रिवेणी ने कहा भरत तुम साधु हो, तुम साधु हो, तुम्हारे ऊपर कोई कलंक नहीं लगाएगा। और उस वक्त भरत ने ऋषियों के समाज में अपने दुख का वर्णन किया है, किसी को अपना दुख भरत ने नहीं बताया, और किसी के सामने दुख बताओगे तो लोग हंसी उठाएंगे, लेकिन साधु संत भगवान के सामने अपना दुख बताया करो, दुनिया को बताओगे तो आपकी हंसी उड़ाएंगे, कोई भला करने वाला नहीं है।
आज भरत कह रहा है, मेरी मां ने कुवचन मांगा, मेरी बदनामी हुई, उसकी मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट माइंड। मेरे पिताजी का देहांत हो गया, आई एम नॉट रियली मच अफेक्टेड, बिकॉज जिसके दो आज्ञाकारी पुत्र राम और लक्ष्मण जैसे हो और उनकी जुदाई के अंदर जिसका प्राण निकल जाए, उससे ज्यादा महान कौन हो सकता है। एक जगह नंद बाबा कहते हैं उद्धव को, उद्धव बाप तो एक ही दुनिया में हुआ है दशरथ, राम के जाते ही प्राण निकल गए, अभी तक हम जीवित हैं, कृष्ण जाने के बाद हम तो झूठा प्रेम कर रहे थे, सच्चा प्रेम तो हमने किया ही नहीं। नंद बाबा अपने भाव बता रहे हैं उद्धव को, बड़ा आश्चर्य लगता है। तो आज भरत कहते हैं मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि पिताजी भगवत धाम चले गए, राम के राम की जुदाई में जाने वाले पिता को, इससे बड़ा और महान कुछ को किसको, मेरे को दुख इस बात का है कि मेरे पूजन ने राम जी और मेरे छोटे पुत्र के समान भाई लक्ष्मण और भाभी वन में बगैर चप्पल के कैसे चलते होंगे, वो संकट जो उनको हो रहा है उसका दुख मैं उस दिन पूरा होगा जिस दिन राम को राज तिलक दूंगा और बिठाऊंगा, तब तक मैं इस दुख से बहुत पीड़ित हो रहा हूं, और राम जी इस दुख को कैसे जानते हैं, ये प्रसंग बता के कथा को समाप्त करते हैं। भरद्वाज के आश्रम से निकले हैं चित्रकूट के रास्ते में जाते हुए, एक जगह सीता जी के पांव में कांटा चुभ गया और कांटा तलवे में लगा और कांटा यहाँ दार्शन के बाहर ऊपर निकल आया, माँ नीचे गिर पड़ी किशोरी सीता, लक्ष्मण आंखों से आंसू से माँ का कांटा निकाल रहा है, राम जी आंखों में आंसू लिए हुए धरती की ओर देख के कहते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी हाथ जोड़ के कहती है माँ, पृथ्वी कहती है माँ हे रामचंद्र अब एक भी कांटा रास्ते में सीता के रास्ते में नहीं आएगा। तब राम जी ने कहने लगा नहीं नहीं नहीं, सीता के रास्ते में कांटा आए तो कांटे बिछने दो, अगर कांटा नहीं लगेगा तो भारत वंश की नारी में पतिव्रता धर्म के पालन की कैसे महिमा बढ़ेगी, लक्ष्मण के रास्ते में कांटा आए तो आने दो, सेवक धर्म में कांटा नहीं खेगा तो सेवक धर्म नहीं पाला जाएगा, मेरे रास्ते में कांटा आए तो आने दो, नेता हूं और कष्ट नहीं उठाऊंगा, केवल फूलों के ऊपर बैठूंगा तो मैं नेता नहीं हूं, लेकिन एक बात याद रखना भरत साधु है और उसके रास्ते में अगर कभी यहां से आए तो तुम कांटा मत निकालना। तो पृथ्वी कहती है भरत साधु है, साधु को तो कष्ट होने में कोई परेशानी नहीं है, वो तो तपस्या करते हैं। राम जी कहते हैं हे धरणी हे माता पृथ्वी सहनशीलता मई, आपने साधु के चरित्र को जाना नहीं है, साधु अपने दुख से दुखी नहीं होता है, साधु दूसरे का दुख देखता है तो उसका हृदय फट जाता है, हाँ साधु स्वभाव नवनीत समाना मक्खन जैसा होता है, गर्मी लगती है तो पिघल जाता है, साधु दूसरे का दुख देखा, अगर भरत के रास्ते में एक भी कांटा हुआ अपने कांटे का नहीं विचार करेगा, कहेगा राम जी यहां से गए हैं सीता गई है उनको कांटा लगा होगा और वो जो दुख होगा वो मेरे से सहा नहीं जाएगा। ये राम जी का बहुत सुंदर छोटा सा भाव है भरत के लिए, और भरत जी को एक जगह राम कहते हैं चित्रकूट में, भरत तुम्हारे त्याग और वैराग, तुमने जो त्याग और वैराग दिखाया है उसने भाइयों के धर्म को सनातन धर्म को तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारी सेक्रीफाइस ने उसको सुरक्षित रखा है, नहीं तो ये सारा धर्म धरती पाताल में चली गई होती अगर तुमने ऐसे नहीं किया होता, मैं शपथ खा के कहता हूँ राम जी ने कहा था, क्योंकि लक्ष्मण भरत ने कहा था कि मैं अगर राज करूंगा ना तो ये धरती पाताल में चली जाएगी, इस धरती के ऊपर कभी फिर राम का राज स्थापित होगा नहीं, और लोग कहेंगे पिताजी मरे तो मरने दो, माताएं विधवाएं होने तो होने दो, भाई बनवास जाए भाभी बनवास भोगे तो भोगने दो, प्रजा दुखी हो तो दुखने होने दो, मैं तो राज करूंगा, लोग कहेंगे ऐसे क्यों करते, बोलो भरत ने ऐसे किया था ना, मैं राज करता तो लोग कहेंगे पिताजी मर गया माताएं विधवा हुई भाई भाभी और बड़े पिता समान भाई बनवास गए और मैं राज करूं, उस दिन धरती धर्म चली जाएगी धरातल में, इसलिए मैं इस राज सिंहासन के ऊपर कभी नहीं बैठूंगा और मेरे बैठने के बाद राम जी कभी आएंगे नहीं सिंहासन के ऊपर, कैसे बैठेंगे सेवक बैठा है उसके ऊपर। तो इसी बात को ध्यान रख के राम जी ने कहा था तुम्हारे त्याग और वैराग के कारण भाइयों के धर्म को तुमने जीवित कर दिया,
तुमने भाइयों के धर्म को जीवित कर दिया, तुमने धर्म के धर्म की बहुत बड़ी रक्षा की है और ये मैं शब्द खा के कहता हूँ। तो ऐसे ये राम कथा गाने का तो बहुत सुंदर मधुर सुर है, लेकिन जीवन में भाइयों के आ जाए ये, और स्त्रियों के जीवन में ये आ जाए कि पति के दुख सुख में कैसे रहना है, तो रामायण का सार्थकता है। सिर्फ गाना नहीं, जीवन में आना जरूरी है, जीवन में आना चाहिए। भाइयों में 50-60 साल जीना है, काहे के लिए लड़ना? 1 इंच 2 इंच के लिए क्या लड़ना? साथ ले जाओगे क्या? काहे के लिए लड़ना? तो ये लड़ना बंद कर लो, अगर प्रेम से रहना शुरू कर दो तो रामायण की सार्थकता है। और अपने कर्म में लगे रहो, भगवान की सेवा में लगे रहो, पीछे मत हटो, तो फिर तो कृष्ण की शिक्षा भगवद गीता की सार्थकता है कि भगवान के स्मरण में रहो, भगवान के भक्त बनो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे उपाध की।